बसवला पुस्तक 10वी लेक्चर नंबर 17 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोए सौवसाहूणम् वेदग वेदग वेदगम् अवेदगम् वेदगंथ संसिद्धम् सिद्धं प्रणमीय शिरसा वोच्छं वेदग महाहियारमहं। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंडर भट्टारक तथा इति शुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। दसवीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 106 पर आ गए हैं। यहाँ हम वृद्धि का प्रकरण देख रहे थे। वेदक महाधिकारी ने इसमें उदय और उदीर्णा की चर्चा है, उसमें से हम यहाँ उदीर्णा की बात देख रहे हैं। और उसमें भी उत्तर प्रकृतियों में प्रकृति स्थान का अपना प्रकरण चल रहा है। प्रकृति स्थान में पहले हमने भुजगार देखा, फिर पद निक्षेप देखा, और अब यहाँ पर वृद्धि का प्रकरण चल रहा है। और वृद्धि के प्रकरण में नाना जीवों की अपेक्षा भी भंग विचय चलेगा। 106 पृष्ठ पर देखते हैं, नीचे का पैराग्राफ। नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचयानुगम का आश्रय लेकर निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। देखो, पद निक्षेप में हमने मात्र उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि, जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और अवस्थित देखा। यहाँ पर वो कितने भाग प्रमाण, वृद्धि का प्रमाण क्या है, उसकी बात चलेगी। तो उसमें हमने संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण हानि और अवक्तव्य से, अवक्तव्य उसमें नहीं आएंगे, परंतु और कौन सा देखा था हमने, चार तो ये देखे थे वृद्धि। कल से हमारा जो वृद्धि का प्रकरण शुरू हुआ था, अवस्थित संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण हानि और अवस्थित और अवक्तव्य उदीर्णा, ये इसमें बताए थे उन्होंने। अब उसी में नाना जीवों की अपेक्षा भंग विषय चलेगा। अभी हम यहाँ पढ़ते हैं ओघ और आदेश। ओघ से संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि और अवस्थित पद के उदीरक जीव नियम से है, और शेष पद भजनीय है। शेष पद में क्या क्या रह गया है, संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण हानि, फिर अवक्तव्य, ये भजनीय है। तो अवक्तव्य को भी लेना, वो भजनीय है। तो तीन पद भजनीय है, तो भंग कितने हो गए, 27, 3×3×3। ये ध्रुव भंग जो है ना, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि और अवस्थित पद के साथ 106 पृष्ठ पर चलेगा अपना। भंग 27 होते हैं आदेश से, ये तो ओघ से तो इतनी बात है। आदेश से नारकियों में अवस्थित पद के उदीरक जीव नियम से है, और शेष पद भजनीय है, भंग 9 होते हैं। यहाँ शेष पद यानी अवक्तव्य तो होते ही नहीं है, तो नारकियों में क्या क्या हो सकता है, ये 6 से 10 हो सकता है, यानी संख्यात गुणा वृद्धि भी नहीं होगी। तो क्या क्या होगा यहाँ पर, शेष पद में कौन, दो ही ले रहेगी ना, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग हानि, और दोनों ही भजनीय बताए, तो भंग 9 होते हैं। इसी प्रकार सब नारकी। ये बात ख्याल में आई? देखो ये समुद्र कीर्तना में हमने क्या देखा था, वृद्धि का 103 पृष्ठ पर, वैसे एक दो लाइन में होगा ये। उन्होंने बताया था ओग से कौन कौन से हैं वृद्धि के पद, संख्यात भाग वृद्धि भी है, संख्यात भागहानि भी है, संख्यात गुण वृद्धि भी है, संख्यात गुणहानि भी है, अवस्थित है और अवक्तव्य है। ओग से ने सभी जीव ले लिए यहाँ पर। मनुष्य त्रिक में ये तो सभी घटित होगा, परंतु नारकियों में क्या क्या होते हैं, तो संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि और अवस्थित, ये तीन ही होते हैं। किसकी बात चल रही है? प्रकृति स्थान उदीर्णा की बात चल रही है। यानी एक एट ए टाइम उदीर्णा होती है, तो उदीर्णा होती है तो उसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि संख्यात व भाग अधिक, तो ये तो हर समय तो नहीं चलेगा। ये बाकी जीवों में तो अनंत उसमें तो हो जाएगा, सभी जीवों में तो हो सकता है, वहां तो भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि और अवस्थित तो हमेशा के लिए बताए थे, परंतु यहाँ उसमें अंतर पड़ेगा, यानी वो हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय बताया वहां। इसी प्रकार हम 106 पृष्ठ पर आते हैं वापस, नीचे से चौथी लाइन लास्ट। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, मनुष्यत्रिक और सब देवों में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि भंग विशेष जानने चाहिए। भंग विशेष जानने चाहिए नहीं, वहां कितने कितने भंग होते उसकी जो अपनी अपनी अलग। तिर्यंचों में अब बता रहे, तिर्यंचों में तिर्यंच जब कहते हैं तो सामान्य सभी तिर्यंच आ गए, तो संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि और अवस्थित पद के उदीरक जीव नियम से है। क्योंकि देखो जो संख्यात भाग वृद्धि भाग हानि कैसे समझना, जैसे भाई जुगुप्सा दोनों का उदय है तो 10 है, उसमें से 8 हो जाएगी या 9 हो जाएगी तो संख्यात भाग हानि हो गए, और 8 या 9 से 10 हो जाएगी तो भाग वृद्धि होगी। तो ये तो अनंत जीवों में तो कोई ना कोई तो हमेशा होगा ही, नाना जीवों की अपेक्षा, इसलिए वहां वो सामान्य तिर्यंचों में और ओघ में नियम से होते ही ऐसा कहा, यानी वो तो ध्रुव भंग कहा, और बाकी अन्य में तो वो तो भजनीय में चला जाता है। तो कहते कदाचित ये है, और एक संख्यात गुण वृद्धि का उदीरक जीव है। ये तिर्यंचों में मंजूबेन संख्यात गुण वृद्धि का उदीरक कैसे समझना? हाँ हाँ बहुत अच्छा, 5 का था, 5 प्रकृति का उदीरक था, कौन सा जीव था वो? औक्षमिक सम्यक दृष्टि गुणस्थान 5वां, उसके 5 का था, भयजुगुप्सा दोनों ही नहीं थी, और वहां से वो मिथ्यात्व में आया और भयजुगुप्सा दोनों का उदय होने लगा, तो 10 को आ गया, तो संख्यात गुण वृद्धि। तो हो सकता है एक ही जीव हो, इसलिए एक कहा। कदाचित ये है और नाना संख्यात गुण वृद्धि के उदीरक है, अधिक है, एक से ज्यादा है। मनुष्य अपर्याप्तकों में सब पद भजनीय है, क्योंकि वो तो मार्गणा ही सांतर मार्गणा है, भजनीय है। तो मनुष्य अपर्याप्तकों में कितने पद हो गए लक्ष्मी बेन, कौन कौन से हो गए? हाँ, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग, क्योंकि एक मिथ्यात्व ही गुणस्थान है, हाँ अवश्य भी होगा, परंतु सभी भजनीय है, तो 3 पद है और उसमें ध्रुव भंग नहीं है, तो 27 करके उसमें से एक माइनस करना तो 26 हो जाएगी, भंग 26 होते हैं। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। विशेषार्थ, पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में 3 पद भजनीय है, इसलिए ध्रुव भंग के साथ 27 भंग होते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में भजनीय में किस किस को लेना, और ध्रुव भंग किसको लेना? अवस्थित अकेला ही ध्रुव भंग होगा, और बाकी जो तीन है पंचेंद्रिय त्रियंच त्रिक में तीन कौन से, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि और संख्यात गुण वृद्धि, तीन भजनी और एक ध्रुव, इसलिए वो 27 भंग हो जाए। तीन त्रिक जितने हैं ध्रुव के साथ, जितने भजनी है उतनी बार तीन तीन आंकड़ा लिखना और गुणा करना। मनुष्य त्रिक में पांच पद भजनी है, यह संख्यात गुण वृद्धि भी है, संख्यात गुण हानि भी है, अवक्तव्य भी है, और अन्य दो तो है ही, संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग हानि। इसलिए ध्रुव भंग के साथ 243 भंग होते हैं। पांच पद भजनी है ना, तो तीन को पांच बार लिखना, आपस में गुणा करना, तीन गुना तीन गुना तीन 27, और फिर आगे इंटू तीन इंटू तीन, हाँ 243। यानी 27 गुणा 9 करना। शेष कथन स्पष्ट ही है। अब आगे वृद्धि का ही प्रकरण चलेगा। भागा भागानुगम, यानी कितने भाग प्रमाण युगात चलेगी यहाँ पर, ये वृद्धि का छठा नंबर का है। सातवां हुआ, देखो पहला समुद कीर्तना था, दूसरा स्वामित्व, तीसरा काल, चौथा अंतर, पांचवा अभी जो देखा हमने नाना जीवों की अपेक्षा, और अभी भागा भाग छठवा अधिकार है। तो निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। यानी अभी जो वृद्धि के हमने अलग अलग देखे, वृद्धि का प्रमाण संख्यात भाग वृद्धि वाले, संख्यात भाग हानि वाले, संख्यात वगैरह वगैरह, तो वो कितने भाग प्रमाण है उसकी चर्चा यहाँ चलेगी। तो ओह से संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग हानि के उदीरक जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण हैं, तो कहते असंख्यात वे भाग प्रमाण है। वो कितने हैं नहीं बताया, कितने भाग प्रमाण है, कितने है पूछेंगे तो कितने हो गए लक्ष्मी बहन, अनंत हो गया, अनंत हो गया। परंतु यहाँ असंख्यात वे भाग क्यों, अवस्थित वाला तो अवस्थित लगातार अंतर्मूर्त तक तो होगा, इसलिए वो असंख्यात गुणा कहेंगे और ये असंख्यात वा भाग कहेंगे। तीन पद ध्रुव है उसमें से ये तीनों में प्रमाण लगा रहे। अवस्थित पद के उदीरक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण है, क्योंकि वो लगातार अंतर्मूर्त तक होता है और ये एक एक समय के लिए होगा। तथा शेष पदों के उदीरक जीव अनंत वे भाग प्रमाण है। शेष पद ने हमने मालूम है तो संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण हानि और अवक्तव्य जो है वो अनंत वे भाग प्रमाण। इसी प्रकार तिर्यंचों में जानना चाहिए, इसलिए शेष पद केवल कह दिया उन्होंने। तो तिर्यंचों में लेना है तो एक ही होगा उसमें से, संख्यात गुण वृद्धि वाला, वो अनंत वे भाग प्रमाण है। आदेश से नारकियों में अवस्थित पद के उदीरक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण है और शेष पदों के उदीरक जीव असंख्यात वे भाग प्रमाण है। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, सामान्य मनुष्य, ये इसीलिए उन्होंने लिखा है शेष पद, क्योंकि जिस मार्गणा में जितने पद है वो लागू हो जाएंगे। अवस्थित को असंख्यात बहुभाग कह दिया, अब ये जो स्टेटमेंट है कि बाकी शेष पद असंख्यात वे भाग पद प्रमाण है, तो सभी नारकियों में, पंचेंद्रिय तिर्यंचों में जहां जितने शेष पद है वो हम समझ लेना। सामान्य मनुष्यों में मनुष्य अपर्याप्त है, सामान्य देव और अपराजित विमान तक के देवों में जानना चाहिए। सर्वार सिद्धि वालों को छोड़ा, क्योंकि वो संख्यात कहेंगे वहां पर, मनुष्य पर्याप्तों को छोड़ा वो भी संख्यात कहेंगे। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और सर्वार सिद्धि के देवों में अवस्थित पद के उदीरक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है और शेष पदों के उदीरक जीव संख्यात वे भाग प्रमाण है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। बात ख्याल में आती मंजू बहन, जिस मार्गणा में संख्यात जीव है उसमें संख्यात बहुभाग और संख्यात विभाग, जहां असंख्यात है वहां असंख्यात बहुभाग असंख्यात विभाग। अब परिमाणानुगम, पहले तो असंख्यात विभाग असंख्यात बहुभाग कहा, उसका प्रमाण कितना है, तो जहां अनंत होगा उसको अनंत कह देंगे भी। तो निर्देश दो प्रकार का है, ओव और आदेश। ओव से संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि, और अवस्थित पद के उदीरक जीव कितने हैं, तो कहते अनंत है। संख्यात गुण वृद्धि के उदीरक जीव कितने हैं, असंख्यात है। किसकी अपेक्षा, तिर्यंचों की अपेक्षा, मेजॉरिटी तो उनकी है ना, 5 से 10 हो जाते हैं। मनुष्य है वो तो थोड़े संख्यात है, मनुष्यों में भी संख्यात गुण वृद्धि होगी, परंतु वो तो जीव संख्यात में हो गए। संख्यात गुण हानि, ये संख्यात गुण वृद्धि के असंख्यात है। संख्यात गुण हानि और अवक्तव्य पद के उदीरक जीव कितने हैं, तो संख्यात है। देखो ये बात आ गई यहाँ पर। आदेश से सब नारकी, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और सब देवों में भुजगार के समान भंग है। यानी वो कितने हैं, तो असंख्यात कहेंगे हम, मनुष्य अपर्याप्त को भी लिया ना। यहाँ संख्यात भाग वृद्धि वगैरह जो अवस्थित पद के वो कितने हैं, तो हर एक अपने अपने असंख्यात है कहेंगे। इसलिए मनुष्य पर्याप्तों को छोड़ा, तिर्यंचों में सब पदों के उदीरकों का भंग ओघ के समान है। जब तिर्यंच कहते तो अनंत व अनंत प्रमाण घटित होगा। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में सब पदों के उदीरक जीव कितने हैं, तो कहते असंख्यात है। मनुष्यों में संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि और अवस्थित पद के उदीरक जीव कितने हैं, तो असंख्यात है। जब मनुष्य कहेंगे तो सामान्य मनुष्यों की बात। और शेष पदों के उदीरक जीव कितने हैं, तो संख्यात है, क्योंकि शेष पद तो पर्याप्तों के हो गए, इसलिए वहां संख्यात कह दिया। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यनी और सर्वार्थ सिद्धि के देवों में सब पदों के उदीरक जीव कितने हैं, तो संख्यात। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। वैसे तो यहाँ बहुत ज्यादा उसमें कुछ डिटेल्स है ही नहीं है, क्योंकि बस वृद्धि कितने होती है, जहाँ जो संख्यात है असंख्यात है अनंत है उसकी बात। ये प्रमाण हो गया, ये परिमाणानुगम वृद्धि का 7वां था प्रकरण, वृद्धि का अनुयोग 7वां था। अब परिमाणानुगम के बाद क्षेत्रानुगम की बात है, ये 8 नंबर का होगा, वृद्धि में 8। तो क्षेत्रानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओव और आदेश। ओव से संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि और अवस्थित पद के उदीरकों का कितना क्षेत्र है, आसान है ना, पूरा लोक है, क्योंकि अनंत जीव कर रहे हैं, इंद्रियों में तो मुख्यता है इसकी। शेष पदों के उदीरकों का लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र है, क्योंकि शेष पद या तो पंचेंद्रिय तिर्यंच को हो गए या मनुष्यों के हो गए, तो लोक का असंख्यात भाग होगा। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए, शेष गतियों में सब पदों के उदीरक जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, असंख्यात वे हो गया, संख्यात वे भाग प्रमाण है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। विशेषार्थ, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि और अवस्थित उदीरणा मिथ्यात्व गुणस्थान में बहुलता से होती है, क्या अन्यत्र नहीं होती, यहां तो जीव अनंत है ना, इसलिए बहुलता से होती है। इन पदों की उदीरणा करने वाले जीव भी अनंत है, इसलिए इनकी अपेक्षा सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र बन जाने से वह तत्प्रमाण कहा है। किंतु शेष पदों का संबंध गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों से आता है। गुणस्थान प्रतिपन्न का अर्थ क्या है? मिथ्या तो गुणस्थान को छोड़कर जो ऊपर के गुणस्थानों को प्राप्त हुए हैं उनको कहते हैं गुणस्थान प्रतिपन्न, क्योंकि शेष पदों में हमने देखा संख्यात गुण वृद्धि, अभी तिर्यंचों में पांचवें गुणस्थान से पहले में आएंगे, और ये मनुष्यों में तो ऊपर के गुणस्थानों में होते हैं, या मनुष्य मरकर वो देव में जाता है, तो वो गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों के होता है। और ऐसे जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण है, क्योंकि गुणस्थान प्रतिपन्न जीव तो संगी पंचेंद्रिय होते हैं, इसलिए वह तत्प्रमाण कहा है। सामान्य तिर्यंचों में अपने संभव पदों की अपेक्षा ओघ प्ररूपणा बन जाने से वह ओघ के समान बतलाई है। सामान्य तिर्यंच कहते तो एक इंद्रिय सारे उसमें आते हैं, तो ओघ की प्ररूपणा घटित हो जाती है पूरा लोक वाले। तथा गति संबंधी शेष मार्गणाओं का क्षेत्र लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण होने से, गति संबंधी शेष मार्गणाएं ने यहाँ तिर्यंचों की बात बता दी है, शेष मार्गणाएं अन्य तीन गति, तो उसमें तो लोक का असंख्यातवा भाग होगा, उनमें संभव पद संभव सब पदों के उदीरकों का क्षेत्र तत्प्रमाण कहा है। तत्प्रमाण ने लोक के असंख्याते भाग प्रमाण। अब स्पर्शनानुगम बताएंगे, ये वृद्धि का नौवा नंबर। निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से संख्यात भाग वृद्धि, ये बहु है वृद्धि हुआ है, संख्यात फिर पढ़ती हूँ मैं, ओग से संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि और अवस्थित पद के उदीरकों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है? सर्वलोक क्षेत्र का स्पर्शन किया है। क्षेत्र ही पूरा लोक है तो स्पर्शन तो पूरा लोक होगा ही होगा। शेष पदों के उदीरकों ने लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए, सब नारकी पंचेन्द्र तिर्यंच पर्याप्त, मनुष्य पर्याप्त और सब देवों में भुजगार उदीरणा के समान भंग है। क्या देवों में वो विहारवत लिया है क्या? एक मिनट में देख के बताती हूँ आपको। भुजगार में स्पर्शन, नारकियों की भी बात ली क्या अभी हमने जो पढ़ा था उसमें? हाँ, तो ये 86 पृष्ठ पर, 86 नहीं 96 पृष्ठ पर, आदेश से तीसरी लाइन, नारकियों में सब पदों के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यात भाग प्रमाण, और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। मारणांतिक में ले सकते उसको, उपपाद वाला भी घटित होगा। इसी प्रकार दूसरी पृथ्वी से लेकर वगैरह वगैरह, यानी अपने अपने स्पर्शन कहेंगे वहां पर। हमें देवों की बात देखनी थी ना, तो देवों में नीचे से चौथी लाइन उसी पैराग्राफ में, देवों में सब पदों के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण, ये तो वर्तमान का, त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 और 9 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है विहार की अपेक्षा। और जो देव मारणांतिक करते हैं 8वीं पृथ्वी में उसकी बात है, और हर एक का अगर अलग अलग कहना है भवनवासी से लेकर ऊपर से, अपना अपना क्षेत्र उसमें बताएंगे, इसलिए यहां उसके समान कहा। अब आते हम 108 पर, अपने मूल पृष्ठ पर, वहां लिखा था भुजगार उदीरणा के समान भंग है, नीचे से चौथी लाइन में आए अभी, पंचेन्द्रिय तिर्यंच त्रिक और मनुष्य त्रिक में संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि और अवस्थित पद के उदीरकों ने लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। मारणांतिक की अपेक्षा सर्वलोक है। शेष पदों के उदीरकों ने लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। अब जो उपशम समय तो में से मिथ्या तो में आ रहा है, पांच से दस हो रहा है, उस समय तो मरण नहीं होगा, मारणांतिक नहीं होगा, तो वो लोक का असंख्यात भाग है। मनुष्य भी जब कुछ श्रेणी में वगैरह है तो भी उसका मरण होता है, परंतु देव में होगा, परंतु मनुष्य लोक वो लोक का असंख्यात भाग ही रहेगा, करेंगे तो भी 45 लाख योजन वाला ही विस्तार रहेगा। देव में जाएंगे तो भी उसी उतने क्षेत्र में ऊपर चले जाएंगे, यानी कौन से क्षेत्र से जाएंगे तो 45 लाख में से जाएंगे। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। ये तो स्पर्शन हुआ, उसी का विशेषार्थ देखते हैं। 109 पृष्ठ पर ओग से संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि और अवस्थित पद के उदीरकों का जब क्षेत्र ही सर्वलोक प्रमाण बतलाया है, तब उन पदों की अपेक्षा स्पर्शन सर्वलोक प्रमाण होगा, इसमें संदेह नहीं। रहे शेष पद, सो एक तो उनका संबंध गुणस्थान प्रतिपन्न जीवों के साथ आता है। दूसरे ये पद यथा संभव जो मिथ्यादृष्टि जीव संयमासंयम या संयम को प्राप्त होते हैं उनके होते हैं, या जो उपशम श्रेणी पर चढ़ते या उतरते हैं, या उपशम श्रेणी में मरकर देव होते हैं उनके होते हैं। ये ख्याल में आई बात, मिथ्यात्व से हमने देखे नौ वाला था और संयम प्राप्त किया, पांच वाला हो गया, या नौ से एकदम सॉरी संयम असंयम में पांच हो गया वो, या संयम के साथ चार का हो गया, तो ये तो मनुष्यों में संभव है। यतः ऐसे जीवों का, यतः ने क्योंकि ऐसे जीवों का स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण होता है, अतः इन पदों की अपेक्षा वह उक्त प्रमाण कहा है। और जब औषमिक सम्यक्तों का काल है उस समय तो मरण नहीं होगा। सामान्य तिर्यंचों में यह स्पर्शन अपने संभव पदों की अपेक्षा इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए वह ओह के समान कहा है, क्योंकि सामान्य तिर्यंचों में वो पूरा लोक वगैरह घटित हो जाता है। सब नार की पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्त, मनुष्य पर्याप्त और सब देवों में भुजगार उदीरणा के समान कहने का कारण यह है कि इनमें संभव तीन पदों का स्पर्शन भुजगार उदीरणा में, जैसा भुजगार अल्पतर और अवस्थित पद का कहा है, वैसा यहाँ क्रम से संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि और अवस्थित पद का बन जाता है। पंचेन्द्रिय तिर्यंच त्रिक और मनुष्य त्रिक का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्वलोक प्रमाण है। जो संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि, एक कॉमा लगाना है, संख्यात भाग वृद्धि के बाद कॉमा, संख्यात भाग हानि और अवस्थित पद की अपेक्षा इनमें घटित हो जाता है, इसलिए इनमें इन पदों की अपेक्षा तो उक्त स्पर्शन कहा है, क्योंकि मारणांतिक पूरे लोक में होता है, इसलिए अतीत स्पर्शन तो घटित होगा और शेष पदों की अपेक्षा स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। शेष पद तो अन्यत्र मुनि होने की अपेक्षा है या श्रेणी में होते हैं। ये तो वृद्धि में हमने स्पर्शन देखा। अब कहते कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। तो पहले भी एक काल आया था, अभी भी एक काल है। हाँ, ये नाना जीवन की अपेक्षा है। तो ये 10 नंबर का है ना, वृद्धि का क्षेत्र स्पर्शन अभी काल। तो कालानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भागहानि और अवस्थित पद के उदीरकों का काल सर्वदा है, सर्वदा हुआ है। हमने वो करने वाले जीव अनंत देखे थे और उनका काल भी सर्वदा है। संख्यात गुण वृद्धि के उदीरकों का जघन्य काल एक समय है, ये नाना जीवन की अपेक्षा बात चल रही है, और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, क्योंकि हमने देखा था लगातार एक के बाद एक अगर आते रहेंगे तो आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण जीव, यानी ऑप्शन सम्यक के साथ सेमा संयम या वो तो ऊपर चले जाएंगे, संयम ही बने जाएंगे। संख्यात गुण वृद्धि में यही लेना, वो आवली का संख्यात भाग तिर्यंच में लेना है, क्योंकि संयमी तो संख्यात हो गए उसके, हाँ उसमें से वो आएगी, उसमें हम काउंट करेंगे, परंतु ये आवली के असंख्यात पे भाग प्रमाण जो जीव है वो तो तिर्यंचों में घटित हो गए। संख्यात गुणहानि और अवक्तव्य पद के उदीरकों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अब ये मनुष्यों में होता है, इसलिए आदेश से सब नारकी, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और सब देवों में भुजगार उदीरणा के समान भंग है। अभी जो हमने देखा था वहां तो हमने क्षेत्र और स्पर्शन देखा था, परंतु यहाँ जो भुजगार उदीरणा में देख लेते हम कालानुगम नाना जीवों की अपेक्षा। अभी हमने क्षेत्र और स्पर्शन देखा था ना, 96 में कालानुगम था, आदेश में 97 पेज पर है। आदेश से कहते भुजगार और अल्पतर पद के उदीरक जीवों का जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात भाग प्रमाण और अवस्थित हमेशा। अवस्थित सर्वदा है और बाकी शेष है वो एक समय से आवली के असंख्यात से भाग। ये आदेश से नारकी, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और सब देवों में, तिर्यंचों में सब पदों का भंग ओह के समान है, क्योंकि तिर्यंच कहते तो वो तीन पद तो हमेशा रहेंगे, उसके सर्वदा रहेंगे। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में अवस्थित पद के उदीरकों का काल सर्वदा है, जैसे नारकियों में हमने सर्वदा देखा था अवस्थित वाला। शेष पदों के उदीरकों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। मनुष्यों में संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात वे भाग प्रमाण। जब मनुष्य कहते तो अपर्याप्तों के साथ लिया उन्होंने, अपर्याप्त मनुष्यों को भी लिया, तभी तो आवली का असंख्यात भाग घटित होगा। एक के बाद एक के बाद एक के बाद इतने जीव वो भाग हानि या वृद्धि करेंगे। अवस्थित पद के उदीरकों का काल सर्वदा है, जैसे अन्य मार्गनाओं में हमने देखा था। संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुणहानि और अवक्तव्य पद के उदीरकों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट कितना होगा, संख्यात समय, एक के बाद एक के बाद एक एक करते रहे तब। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है इनमें आवली के असंख्यात वे भाग के स्थान में संख्यात समय करना चाहिए। कहां पर? संख्यात भाग वृद्धि हानि के लिए भी संख्यात समय, और अवस्थित तो सर्वदा है। ये बात ख्याल में आई? जब मनुष्य कहते हैं तो पर्याप्त अपर्याप्त सब ले लिया हमने एक साथ, तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद कोई करेगा तो अवली का संख्या तो अभाव होता है। परंतु यहाँ पर्याप्त मनुष्य है या मनुष्य नहीं, वो तो होते ही संख्यात है, तो एक के बाद हो गए तो भी संख्यात कहेंगे हम उसको भी विशेषार्थ। सामान्य से अनंत जीव संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि और अवस्थित पद की उदीर्णा करते हैं, इसलिए ओग से इनका काल सर्वदा बन जाने से वह उक्त प्रमाण कहा है। संख्यात गुण वृद्धि अधिक से अधिक असंख्यात जीव करते हैं, इसलिए इस पद की अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अवली के असंख्यातवे भाग प्रमाण प्राप्त होने से वह तत्प्रमाण कहा है। संख्यात गुणहानि और अवक्तव्य पद की उदीर्णा अधिक से अधिक संख्यात जीव करते हैं, संख्यात गुणहानि तो तिर्यंचों में नहीं होती है, मनुष्यों में होगी। तिर्यंचों में तो वो वृद्धि वाली बात देखी थी हमने, इसलिए इनकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। यह सामान्य न्याय है। इसी प्रकार गति मार्गणा के सब भेदों में उनका परिमाण और पद जानकर काल घटित कर लेना चाहिए। जिस मार्गणा में जो जो यहाँ घटित होती है वहां उसको ले लेना है। मात्र अवस्थित पद का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होने से उसका काल सर्वत्र सर्वदा बन जाता है, इतना विशेष जानना चाहिए। अभी अंतरानुगम कितना, 11 नंबर है क्या? वृद्धि में 11वां अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है। अभी हमने जो विशिष्ट वृद्धि हानि देखी उसमें अंतर देखेंगे, तो जो जो पद सर्वदा कहे थे उसमें अंतर नहीं कहेंगे। तो निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग हानि और अवस्थित पद के उदीरकों का अंतरकाल नहीं है, वह सर्वदा है ना, इसलिए उसका अंतर नहीं है, अनंत जीव कर रहे हैं उसको। संख्यात गुण वृद्धि के उदीरकों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर 14 दिन रात है, क्योंकि हमने ये 14 दिन कैसे प्राप्त किए? औषमिक सम्यक्त के साथ पांचवा गुण स्थान वाले जीव तिर्यंचों की मुख्यता से लिए और फिर उपशम से वो हटकर मिथ्यात्व में आए, तो जो अंतर है उपशम सम्यक्त का उतना ही अंतर यहाँ लिया, 14 दिन रात का, पांचवे गुण स्थान की अपेक्षा। संख्यात गुणहानि के उदीरकों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर 15 दिन रात है। वहां 14 दिन रात है संख्यात गुण वृद्धि के लिए। अभी संख्यात गुणहानि के लिए कैसे लिया? नौ में से चार हो जाएगा, संयम प्राप्त करने वाले के। हाँ, वैसे तो 14 दिन और 15 दिन ऐसा कुछ भेद किया है उन्होंने, फिर भी यहाँ 15 दिन रात बताया। अवक्तव्य पद के उदीरकों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक है, क्योंकि वो उपशम श्रेणी का काल है, उतरते हुए ले लिया, यानी उपशम श्रेणी का काल नहीं कहेंगे, अंतर कहेंगे। आदेश से सब नारकी पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, मनुष्य पर्याप्त और सब देवों में भुजगार उदीर्णा के समान भंग है, जो हमने देखे थे उसमें अवस्थित पद तो हमेशा हो गए, और बाकी में अंतर कितना पड़ेगा? अभी की कहा हम 97 पर थे ना, पेज 98 में अंतर है नारकियों में आदेश में 14-5 लाइन। गुजगार और अल्पतर के उदीरकों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर मूर्त है। और मनुष्य अपर्याप्तों में वो मार्गणा का अंतर लिया, पल्ले के असंख्या तो आप उत्कृष्ट अंतर ऐसा ही है। उपशम समयक्त के साथ वाला लेना वहां पर, और वहां 14 दिन रात है, वो तो पांचवे गुणस्थान की अपेक्षा बताया, और वो भी सभी तो मिथ्या तो भी नहीं आएंगे 10 वाले के साथ, फिर भी जो 14 दिन रात बताया है। देखो ये उत्कृष्ट अंतर 15 दिन रात बताया ना, संख्यात गुण हानि वाला
वो तो प्रथम पक्ष भी होगा, क्योंकि
संख्यात गुण हानि वो भी होगा, जो श्रेणी वाले भी उसमें ऐड कर सकते थोड़े, उनकी मुख्यता नहीं है उसका वर्ष पृथक वर्ष होता है अंतर, और ये तो उपशम श्रेणी उपशम सम्यक तो के साथ संयम प्राप्त करने वाले लेना है। होगा ही हाँ, क्योंकि 9 वाला था उसमें से वो 4 वाला हो गया।
9 वाला से 9 से 5 वाला होगा वो तो प्रत्यक्ष
नहीं, नहीं 9 से 4 बताया ना, 9 से 4 हो गया, आधे से भी कम हुआ ना, वो संख्यात गुणा नहीं हो गई। किसमें ये नाना जीवन की अपेक्षा बात चल रही है?
संयम तो मनुष्य प्राप्त
करेंगे, बराबर है, मनुष्य प्राप्त करेंगे
तो 15 दिन का कोई ना कोई,
हाँ, क्योंकि उपशम सम्यक तो मार्गणा का ही अंतर उतना है, हमने देखा था ना चौथे गुणस्थान वाले 7 दिन में, फिर 15 दिन में, 24 दिन में, ऐसा जो कोई अलग अलग उसमें है। 24 दिन रात देखा था, परंतु हाँ यहाँ 15 दिन बताया। हम कहाँ तक आए थे देखो, भुजगार उदीर्णा के समान भंग हम देख के आए, अभी अब फिर यहाँ आए थे, ये सामान्य तीर इंच अभी आदेश से पढ़ रहे थे ना। हाँ हाँ ना, मुनि अवस्था प्राप्त करने यानी वो तो अभी नया प्राप्त कर रहे हैं।
हाँ पहले से,
पहले से सातवें में, पहले द्रव्यलिंग धारण किया है, पहले धारण किया है द्रव्यलिंग, और वहां से 15 दिन में यानी कितनी बात हो गई, और वो कोई ऐसा नहीं हो सके बार बार प्राप्त करे, वैदिक समय को तो हो सकता है कि वो नीचे आया और इमीडिएटली प्राप्त किया, ये तो प्रथम उपशम की बात चल रही है। वो लोग पूछते हैं मुनि है कि नहीं हमको बताओ, ये हो सकता है उसमें से कितने ही जाते होंगे फिर नीचे की गुणस्थानों में, उसकी बात नहीं है, प्राप्त कर रहे हैं और उनकी भी संख्या करोड़ों में है, यानी संख्या थी जीव है वहां पर, फिर भी इतने 15 दिन रात में ये बात होती है। जाएंगे हाँ, और फिर वैदिक समयक्त के साथ प्राप्त कर भी सकते हैं, वो भी हो सकता है ना। उपशम समयक्त की बात चल रही है,
नहीं है
ना ना सर्वार सिद्धि वाले नियम से नेक्स्ट भाव में मोक्ष जाएंगे।
और अपराजित वाले
घूम सकते हैं, मगर उसमें भी ऐसा अर्धपुद्गल वाला नहीं होगा उसमें। और यानी एक समय कम वाला है ना, तैतीय सागर में एक समय कम, उसमें और एक दो भाव हो सकते हैं उसके, इतना अनंत काल नहीं जाएंगे। हाँ, ये हम पढ़ रहे थे यहाँ पर 110 पृष्ठ पर। हाँ, आदेश से हमने अभी पढ़ा, फिर पढ़ती हूँ मैं। अंतर में आदेश से बीच में है, सब नारकी पंचेन्द्र तीरियन अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और सब देवों में भुजगार उदीर्णा के समान भंग है। यानी अंतर की बात चल रही, भुजगार उदीर्णा के समान अंतर है। सामान्य तीरियंच पंचेन्द्र तीरियंच त्रिक में भुजगार उदीर्णा के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है, इनमें संख्यात गुण वृद्धि के उदीरकों का अंतर ओघ के समान है। जो अभी ऊपर देखा था 14 दिन रात, क्योंकि इन्हीं की अपेक्षा हो था। मनुष्य त्रिक में भुजगार उदीरणा के समान भंग है, किंतु इतनी विशेषता है, इनमें संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुणहानि और अवक्तव्य पद के उदीरकों का अंतर काल ओघ के समान है। अभी हमने ऊपर देखा था संख्यात गुणहानि का, वो जो 15 दिन रात बताया था, अवक्तव्य का वर्ष पृथत्व बताया था। हाँ, और संख्यात गुणहानि का वो 14 दिन रात बताया था। विशेषार्थ उपशम सम्यक्त्व के साथ जो संयता संयत मिथ्यात्व में आते हैं, बात आई ना, उनका जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 14 दिन रात है, अधिक से अधिक अंतर। यानी हर 14 दिन रात कोई ना कोई कहते तो अपन बीच में उससे भी कम अंतर में हो सकते हैं, ये बात हम भूल रहे हैं। यानी संख्या और बढ़ जाएगी उनकी, क्योंकि आय के अनुसार हानि होती है, ये मूल उनका सिद्धांत है। आय के अनुसार हानि होती का अर्थ क्या मंजू बहन? हाँ, जितने औपशमिक समय तो प्राप्त करेंगे उतने ही वहां से ऑलरेडी जो पूर्व में थे उतने ही वो मिथ्यात्व में चले जाएंगे। जितनी आय होती उतना ही व्यय होता है। हाँ करेंगे, क्योंकि औपशमिक समय भी तो एक अंतर्मूर्त वाला ही बात है वहां पर, और जितने उतने प्राप्त करेंगे उतने नीचे भी आएंगे। और ऐसे जीवों के संख्यात गुण वृद्धि उदीर्णा संभव है, इसलिए यहाँ संख्यात गुण वृद्धि उदीर्णा का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 14 दिन रात कहा है। तथा ये तो बात हुई ना उपशम संयुक्त के साथ संयता संयम, जो मिथ्या दृष्टि उपशम संयुक्त के साथ संयम को स्वीकार करते हैं, उनका जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 15 दिन रात होता है। यहाँ भी जघन्य एक समय, एक समय के अंतर से कोई ना कोई प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे जीवों के संख्यात गुणहानि उदीर्णा होती है, इसलिए यहाँ पर संख्यात गुणहानि उदीर्णा का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 15 दिन रात कहा है। यानी इतने दिनों में कोई ना कोई वहां से उपशम समय तो छूट कर मिथ्यात्व में भी जाते, जितने प्राप्त करते उतने वहां से छूट कर मिथ्यात्व में भी जाते रहते हैं। शेष कथन सुगम है, क्योंकि उसका अनेक बार स्पष्टीकरण कराए हैं। ये भाव सर्वत्र औदयिक है, ये वृद्धि का 12वां, इसमें 13 ही अनुयोग है ना। अब अल्प बहुत्व अनुगम, ये नंबर 13वां अनुयोग। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से अवक्तव्य उदीरक जीव सबसे स्तोक है, वो तो हमने देखे थे संख्यात ही है। उनसे संख्यात गुणहानि उदीरक जीव संख्यात गुणे हैं, संख्यात गुणहानि हमने देखे थे, ओ हाँ मिथ्यात्व में से संयम प्राप्त करने वाले वो संख्यात गुणे हैं। उनसे संख्यात गुणवृद्धि उदीरक जीव असंख्यात गुणे हैं, इसमें वो तीर्यंच भी आ गए इसलिए असंख्यात गुणा हो जाता है। उनसे संख्यात भाग वृद्धि उदीरक जीव अनंत गुणे हैं, क्योंकि अनंत जीव तो संख्यात भाग वृद्धि को तो करते ही रहते हैं, यानी सभी जीवों में तो ये होता ही रहता है ना, 8 से 9 या 10। उनसे संख्यात भाग हानि उदीरक जीव विशेष अधिक है, यानी हानि वाले ज्यादा हैं, वृद्धि वाले हाँ फुल स्टॉप। उनसे अवस्थित उदीरक जीव असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि संख्यात भाग वृद्धि करो या हानि करो उसके पश्चात अवस्थित तो लगातार अंतर्मूर्त तक होगा ही होगा, तो इसलिए उसको असंख्यात गुणा कहेंगे। ये तो ओक की अपेक्षा हो गया। आदेश से नारकियों में संख्यात भाग बुद्धि उदीरक जीव सबसे स्तोक है, क्योंकि उनमें ना अवक्तव्य है, ना संख्यात गुणहानि है, ना संख्यात गुण वृद्धि है, तो संख्यात भाग वृद्धि वाले कम है। उनसे संख्यात भाग हानि उदीरक जीव विशेष अधिक है, और उनसे अवस्थित उदीरक जीव असंख्यात गुणे हैं। इसी प्रकार सब नारके और सब देवों में जानना चाहिए, सब देव सब हुआ है, सब देवों में जानना चाहिए। अंतर्मूर्त भय और जुगुप्सा का उदय नहीं भी है तो अंतर्मूर्त होता है, तो भी अंतर्मूर्त अभी, और उनका आगे पीछे भी हो सकता है ना। मान लेते भय का उदय चल रहा है और जुगुप्सा ज्वाइन हो गया, तो थोड़े काल तक दोनों का एक साथ है, फिर भय का मिटेगा जुगुप्सा का चलता रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। या दोनों एट ए टाइम चालू हो गए, दोनों एट ए टाइम बंद हो गए, ऐसा भी हो सकता है, उसमें सभी पॉसिबिलिटीज है। हाँ देखो ऐसा, किंतु इतनी विशेषता है, मिल गया विषय पता विशेषता। किंतु इतनी विशेषता है कि सर्वार्थ सिद्धि में असंख्यात गुणे के स्थान में स्यान में हुआ संख्यात गुणे करने चाहिए। तीर्यंचों में संख्यात गुण वृद्धि उदीरक जीव सबसे स्तोक है, यानी हो सकता है वो असंख्यात हो। आवली का तो काल बताया एक के बाद एक, एट ए टाइम करने वाले भी हो सकते हैं ज्यादा। उनसे संख्यात भाग वृद्धि उदीरक जीव अनंत गुणे हैं, उनसे संख्यात भाग हानि उदीरक जीव विशेष अधिक है, यानी वृद्धि वालों से हानि ज्यादा है विशेष अधिक, सर्वत्र दिया हमने। उनसे अवस्थित उदीरक जीव असंख्यात गुणे हैं। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में जानना चाहिए, किंतु जहां पर अनंत गुणे कहे हैं वहां असंख्यात गुणे करने चाहिए, क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक होते ही असंख्यात है, तो उसमें वो अनंत गुणे वाली बात घटित नहीं होगी। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में संख्यात भाग करना म हुआ संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग हानि के उदीरक दोनों प्रकार के जीव समान है। अरे वाह, इनमें समान कह दिया। उनसे अवस्थित उदीरक असंख्यात गुणे हैं, अन्यत्र समान नहीं कहते, यहाँ समान बताए। सभी मार्गणाओं में हमने हानि वाले विशेष अधिक देखे थे और यहाँ समान बता रहे हैं। मेरे ख्याल से हानि में वो बाकी भी जीव थोड़े उसमें गुणस्थान प्रतिपन्न वालों को भी लेते होंगे शायद, इसलिए हानि वाले ज्यादा होते होंगे ना। पता नहीं क्यों लिखा ऐसा, या तो एक ही एक गुणस्थान चलेगा उनका इसलिए वो समान बताए। उनसे अवस्थित उदीरक जीव असंख्यात बने, वो हो गया। मनुष्यों में अवक्तव्य उदीरक जीव सबसे स्तोक है, उनसे संख्यात गुणहानि उदीरक जीव संख्यात गुणे हैं। यह गुणहानि वालों को ज्यादा लिया। संख्यात गुण वृद्धि उदीरक जीव संख्यात गुणे हैं। और उनसे संख्यात भाग वृद्धि उदीरक जीव असंख्यात गुणे हैं। मनुष्य कॉमन लिया ना इसलिए। और उनसे संख्यात भागहानि उदीरक जीव विशेष अधिक है, उनसे अवस्थित उदीरक जीव असंख्यात गुण है। संख्यात गुणहानि वाले जो है ना, अवक्तव्य में तो उष्ण श्रेणी से उतरते हुए, और यहाँ भी संख्यात गुणहानि हुई है। चढ़ने वालों के भी होगी ना, चार से दो हुए, दो से एक हुए, वो भी संख्यात गुणहानि वाले थे। संख्यात गुण वृद्धि वाले उससे विशेष अधिक है। मनुष्यों में संख्यात गुणवृद्धि वाले यानी वो एक से दो हुआ वो भी संख्यात गुणवृद्धि, दो से चार हुआ वो भी संख्यात गुणवृद्धि, अब चार से डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे, चार से नीचे मिथ्यात्व में भी चले जाएंगे वो वृद्धि वाले हो जाएंगे, या चार से आठ भी हो जाएंगे तो भी वृद्धि वाले कहेंगे, चौथे गुणस्थान में भी आएंगे तो भी। तो ये वृद्धि वाले लिए ज्यादा है लिया संख्यात गुण के लिए। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियम में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है, जहां असंख्यात गुणे कहेंगे ना वो तो नहीं कहेंगे, कि इनमें असंख्यात गुणे के स्थान में संख्यात गुणे करने चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इस प्रकार वृद्धि समाप्त हुई। केवल वृद्धि नहीं समाप्त हुई, तो कहते प्रकृति स्थान उदीर्णा समाप्त हुई। प्रकृति स्थान वाला जो प्रकरण था, पहले तो 24 अनुयोग द्वार अलग बताए, फिर भुजगार अपधन क्षेप और वृद्धि वाले और एक सब बताए, ये सब समाप्त होते हैं। इसलिए कदि आवलियम पवेसेदि, इस पद का व्याख्यान समाप्त हुआ। इस प्रकार प्रकृति उदीर्णा समाप्त हुई। पहले में एक एक गाथा के चार चार भाग करके बताए, एक कदि आवलियम पवेसेदि ऐसा पूछा था, तो उसमें प्रकृति उदीर्णा की बात है। आवली में प्रवेश करते हैं, उदयावली में प्रवेश करते हैं, उसी को उदीर्णा कहा था। तो उसमें मूल प्रकृति उदीर्णा, उत्तर प्रकृति उदीर्णा, फिर एक एक प्रकृति की उदीर्णा देखी हमने, और उसमें स्थान उदीर्णा भी देखी। अब यहाँ आगे पूछते हैं, कदिच पविसंति कस्स आवलियंति, किस जीव के कितनी प्रकृतियां उदयावली में प्रवेश करती हैं। अधिकार की संभाल करने वाला यह सूत्र है। अब पूर्वोक्त कथन के आगे गाथा सूत्र का कदिच पविसंति कस्स आवलियम, यह दूसरा पद प्रकृत में प्रवृत्त होने से व्याख्यान करने योग्य है। पहला जो पद था कदि आवलियम पवेसेदि, उसका व्याख्यान हो गया, अभी आगे का करते हैं। इतनी विशेषता है कि इस सूत्र पद में प्रकृति प्रवेश अनुयोग द्वार प्रतिबद्ध है। यहाँ प्रकृति प्रवेश की बात है, क्योंकि उदय और अनुदय रूप से उदयावली में प्रवेश करने वाली प्रकृति मात्र का यहाँ अधिकार है। क्या कहते हैं, कोई अनुदय रूप है फिर भी उदयावली में प्रवेश करती है, उदय नहीं हो रहा है, तो उदय रूप हो या अनुदय रूप हो, उदयावली में प्रवेश करने वाले की बात है। वह प्रकृति प्रवेश दो प्रकार का है, मूल प्रकृति प्रवेश और उत्तर प्रकृति प्रवेश। उदीरणा नहीं कहा या उदयावली में प्रवेश कहा? ये उदयावली में प्रवेश करती है ऐसा कथन करेंगे, अभी उदीरणा नहीं कहेंगे इसको। उदीरणा किसको कहेंगे? उदय के साथ उसका उदय होता है, उदीरणा तो उदयावली में तो आते ही आती है, वो उदय रूप होती है, नीचे आकर उदय होता है उनका, वो बात है। यहाँ कितने उदय उदयावली में प्रवेश करेंगे पर उदय नहीं होगा, ऐसे भी होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जो एक समय का थ्यूक संक्रमण होकर बाद में उदय रूप पर रूप से उदय में आती है, उसकी उदयावली में प्रवेश तो होता है। अब ये क्या कहेंगे वो आगे चल के देखेंगे, मैंने भी नहीं पढ़ा है, परंतु इन दोनों में अंतर तो डेफिनेटली है। तो मूल प्रकृति प्रवेश और उत्तर प्रकृति प्रवेश। उत्तर प्रकृति प्रवेश दो प्रकार का है, एक एक उत्तर प्रकृति प्रवेश और प्रकृति स्थान प्रवेश। यानी एक एक प्रकृति की बात करेंगे, वो उदयावली में आती है कि नहीं आती है, सबकी बात अलग अलग करेंगे। और जैसे अभी हमने उदीरणा में स्थान का देखा था, एट ए टाइम करने वाले, उसके वहां स्थान बताएंगे। यानी वहां उदय रूप और अनुदय रूप दोनों को काउंट करेंगे। यहाँ तो हमने जो उदय रूप थे उसी की बात की थी, क्योंकि वो तो हमें आसानी था, क्योंकि उदय के कुट हम जानते थे, तो उदय रूप प्रकृतियों को ही हमने उदीरणा वाली कह दी थी। अब यहाँ और कुछ ज्यादा सीखेंगे। उनमें मूल प्रकृति प्रवेश, इसका नाम प्रवेश ही कह दिया उन्होंने, वहां उदीरणा नाम दिया था, यहाँ प्रवेश नाम दिया है। मूल प्रकृति प्रवेश और एक एक उत्तर प्रकृति प्रवेश सुगम है, इसलिए इस सूत्र में उनका व्याख्यान नहीं किया। इसलिए अलग अलग 24 संयोग द्वारों का आश्रय लेकर यहाँ पर उनका व्याख्यान जानकर कर लेना चाहिए। अतएव प्रकृति स्थान प्रवेश प्रकृत है। यानी सबके 24-24 संयोग द्वार लगाना चाहिए कहते हैं। तो ये प्रकृति स्थान प्रवेश बता रहे हैं, उनमें समुत्कीर्तन सादि और अनादि से लेकर अल्प बहुत्व तक ये 17 अनुयोग द्वार तथा भुजगार पद निक्षेप पर वृद्धि, ये 3 अनुयोग द्वार है। यानी यहाँ डायरेक्ट यहाँ पर स्थान की बात चलेगी, प्रकृति स्थान प्रवेश, यहाँ बात प्रकृति स्थान प्रवेश की चलेगी। मूल प्रकृति प्रदेश, उत्तर प्रकृति प्रदेश और एक एक प्रकृति प्रदेश की बात यहाँ नहीं कर रहे, हर एक में 24-24 संयोग द्वार लगाना चाहिए बात कह रहे। अब प्रकृति स्थान प्रवेश में समुत्कीर्तना कहेंगे, एक नंबर का है, यहाँ 17 अनुयोग द्वार है और भुजगार पदनिक्षेप वृद्धि 3 और 100 है। तो समुत्कीर्तना दो प्रकार की है, दो प्रकार को हो गया ना, दो प्रकार की है, स्थान समुत्कीर्तना और प्रकृति समुत्कीर्तना। अब इन दोनों का कथन करने के लिए आगे के सूत्र द्वारा अवसर करते हैं, क्या क्या शब्द आते हैं ना ऊपर सूत्र पढ़ेंगे। एथ पूर्वम गमणिज्जा ठाण समुकीर्तना पयड़ी निर्देशोच, यहाँ पर सर्वप्रथम स्थान समुत्कीर्तना और प्रकृति निर्देश ज्ञातव्य है। स्थान तो बताएंगे कितने प्रकृतियों का है और उसमें प्रकृति कौन सी है वो भी बताएंगे। यहाँ पर अर्थात इस प्रकृति स्थान प्रवेश ग्रवेश हुआ अनुयोग हुआ अनुयोग द्वार में पूवम अर्थात प्रथम ही स्थान समुत्कीर्तना और प्रकृति निर्देश गमणिज्य अर्थात अनुमार्गण करने योग्य है जानने योग्य है। उनमें से 28 प्रकृतिक स्थान से लेकर ओघ और आदेश से इतने प्रकृति स्थान उदयावली में प्रविशमान है ऐसी प्ररूपणा करना स्थान समुत्कीर्तना है तथा इन प्रकृतियों को ग्रहण कर यह प्रवेश स्थान उत्पन्न होता है ऐसी प्ररूपणा करना प्रकृति निर्देश है। यानी वो कितने हैं वो बताना वो तो प्रकृति स्थान प्रवेश कहेंगे और एक एक प्रकृतियों का नाम लेके बताएंगे उसको कहेंगे प्रकृति प्रवेश स्थान। इन दोनों का एक प्रबंध के द्वारा कथन करेंगे ऐसा ज्ञान कराने के लिए आगे का प्रतिज्ञा वाक्य करते हैं। ताणी एकदो भणिसंति उन दोनों को एक साथ कहेंगे। यानी इतनी प्रकृतियां होती है अगर 28 होती है तो बाद नाम बताने की जरूरत नहीं है। यह सूत्र सुगम है। 28 पयड़ियो उदयावलियम पविसंति 28 प्रकृतियां उदयावली में प्रवेश करती हैं। 28 प्रकृति समुदाय का एक प्रकृति स्थान उदयावली में प्रविशमान है यह इस सूत्र द्वारा कहा गया है। इस सूत्र में यद्यपि मुक्त कंठ होकर प्रकृतियों का संदेश नहीं किया है गला खोलकर यानी स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं किया गया है तो भी उनका निर्देश किया ही है ऐसा जानना चाहिए। अभी 28 बता दिया और 28 ही होती है तो उसका नाम लेने की क्या जरूरत है। जब 27 कहेंगे तो अरे कौन सी नहीं आई है ऐसा सोचना पड़ेगा क्योंकि 28 संख्या का निर्देश करने से ही मोहिनी की प्रकृतियों का नाम निर्देश जता दिया है। तो 28 उदयावली में प्रवेश करती रही है तो कौन सा जीव होगा मिथ्या दृष्टि भी होगा सादी मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है ना। अभी हम तो स्वामित्व पढ़ेंगे आगे परंतु अभी थोड़ा सोच तो सकते हैं यह ना उदयावली के प्रवेश की बात है उदय की नहीं क्योंकि हमने देखा था मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व को उदय है और एक समय ऊपर सम्यक सम्यक मिथ्यात्व पड़ा है तो उदयावली में सभी भी प्रवेश कर चुके हैं वहां पर सादी मिथ्या दृष्टि बताए ना अभी सादी मिथ्या दृष्टि यानी वो तीसरे गुणस्थान में भी यही पोजीशन होगी और फिर चौथे में ये कहीं पर भी जो 28 की सत्ता वाला है सासादन में भी कहेंगे क्योंकि वो तो 28 की सत्ता वाला होते ही होते हैं तो सर्वत्र तो ये हम कह सकते हैं वो तो आगे बढ़ेंगे हम तभी स्वामित्व में आएगी बात। अब कहते 27 पयड़ियो उदयावलियम पविसंति सम्मत्ते उवेल्लिदे मैं पूछने वाली थी यहाँ बता दिया उन्होंने क्या कहा मंजूबेन 27 वाले प्रवेश करते कब होगा उद्वेलना कर चुका है तो 27 प्रकृति वाला ही है तो वो सब उदयावली में प्रवेश तो करती है। क्षायिक होने जा रहा है उसकी अनंतानुबंधी नष्ट हो गई है मिथ्यात्व गया है सम्यक मिथ्यात्व गया है अभी उसके छह नष्ट हो चुकी है रहेगी जाने वाली अभी तो 28 में से छह यानी वो 22 का प्रवेशक कहेंगे हम उसका प्रत्यप्रत्य वेदक में नहीं अभी अभी हम 27 पर चल रहे हैं ना यहाँ लिखा है सम्यक्व की उद्वेलना करने पर 27 प्रकृतियां उदयावली में प्रवेश करती है। देखो ये कितना अपने को यानी वो कर्मों की भी बारे में उसके बारे में भी कितना यानी बिल्कुल सही हमारे नॉलेज हो जाता है। जब शुरू में वो रचना होती है कभी कभी तो उदयावली में होती है और ऊपर पड़े रहते हैं और बाद में वो भी क्रम से नीचे आते जाते हैं। 28 सत्कर्मिक मिथ्या दृष्टि के द्वारा 28 सत्कर्मिक का अर्थ क्या है लक्ष्मी बहन? 28 की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि उसके द्वारा पूर्वोक्त स्थान में से, पूर्वोक्त स्थान कौन सा? 28 वाला, उसमें से सम्यक्त्व की उद्वेलना करने पर 27 प्रकृति समुदायात्मक अन्य प्रवेश स्थान उत्पन्न होता है, ऐसा इस सूत्र द्वारा कहा गया है। यहाँ पर भी व्यतिरेक मुख से प्रकृति निर्देश किया है ऐसा जानना। ये व्यतिरेक मुख वहां तो कहते हैं कि बताया नहीं है परंतु 28 है तो बता दिया, तो यहाँ सूत्र में बता दिया ना व्यतिरेक मुख ने एक को कम करके बताया है, उसका नाम भी बताया कि सम्यक प्रकृति को छोड़कर, यानी 27 के नाम बताए जैसा ही है ये कहते हैं। ख्याल में आती है व्यतिरेक मुख से यानी उसको रूल आउट किया, एक को रूल आउट किया तो बाकी 27 का नाम बताए जैसे हो गया। 26 पैडियो उदयावलियम भविष्यन्ति सम्मत्त सम्मा मिच्छत्तेसु उवेल्लिदेसु। अभी नहीं भी उवेल्लियम हुआ अनादि मिथ्या दृष्टि है तो भी उसको हम कहेंगे 26 वाला है, फिर भी यहाँ उन 28 से शुरुआत की थी इसलिए इन दो की उद्वेलना होने पर की बात की उन्होंने। सम्यक कर सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करने पर 26 प्रकृतियां उदयावली में प्रवेश करती है, यहां भी नाम बताने की जरूरत नहीं है 26 का। पूर्वोक्त 28 प्रकृतिक प्रवेश स्थान में से सम्यक कर सम्यक मिथ्यात्व की क्रम से उद्वेलना कर देने पर 26 प्रकृतिक प्रवेश स्थान उत्पन्न होता है, पहले 27 वाला हो जाएगा फिर 26 वाला होगा, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। जिसने सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना की है केवल ऐसे जीव के ही नहीं किंतु अनादि मिथ्या दृष्टि के भी, अभी हमने बताया था 26 प्रकृतिक प्रवेश स्थान होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। अथवा 28 प्रकृतिक और 27 प्रकृतिक इनमें से अन्यतर सत्कर्म वाले उपशम सम्यक्त्व के अभिमुख हुए मिथ्या दृष्टि के द्वारा अंतरकरण करके सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की आवली प्रमाण प्रथम स्थिति के गला देने पर मियात्व की हुआ मिथ्यात्व की, हम इसको देखेंगे पहले पढ़ेंगे क्या कहते हैं। 28 प्रकृति या 27 प्रकृति वाला था और वो कैसा है? उपशम सम्यक्त्व के अभिमुख हुआ ऐसा मिथ्या दृष्टि है। तो उपशम सम्यक्त्व के अभिमुख हुआ है ना क्या करता है? तो पहले अंतरकरण करता है, तो अंतरकरण किया उसने और नीचे पहली स्थिति में क्या है उसके? सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की आवली प्रमाण प्रथम स्थिति के गला देने पर उसकी नीचे जो प्रथम स्थिति थी वो गल गई, 26 प्रकृतिक प्रवेश स्थान प्राप्त होता है। अच्छा इसकी सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि है। हाँ वो तो थोड़ा वाक वाकी था, उसने अंतर कर दिया मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, ये सब एक समय ऊपर पड़े ही है ना, ये मिथ्यात्व का उदय और ये ऊपर पड़े हैं। अब ये ऐसा जीव है ऊपर बहुत है ऐसा नहीं लेना, आवली प्रमाण ही बाकी थे उसके, ऐसा ले ले। हाँ, या ऐसा भी ले लो कि जब इसके आवली प्रमाण निषेक बाकी रह गए हैं, ने अंतर अंतर किया है, अंतर कर या तब नीचे तो अंतर्मूर्त प्रमाण था, अंतर्मूर्त प्रमाण अभी एक एक समय बीत जाएगा, अंतर करेगा उसका उपशम करने का कार्य चालू है, अंतर करने के बाद बाय द टाइम उपशम चल रहा है, ऊपर से सभी कर्म नीचे आते रहते हैं, उसको आगाल प्रत्यागाल भी कहते हैं, यानी समय समय मिथ्यात्व का ऊपर से नीचे माल आता रहेगा और यहाँ ये निषेक बनते रहेंगे। अब जब आवली प्रमाण बाकी रहा काल, तो आगाल प्रत्यागाल बंद हो जाएगा। अब ये घटते घटते आवली प्रमाण रह गया, अब ऊपर से नीचे नया नहीं आएगा और ये तो नष्ट हो, मिथ्यात्व की तो लंबी स्थिति, ये तो नष्ट हो जाएगा। अब यहाँ ऐसा ही है ना, मिथ्या तो है मगर ये नहीं, ये नहीं, इसका भी प्रवेश नहीं हो रहा है, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का प्रवेश नहीं है, या ऐसा भी हमने देखा था, आपको याद होगा तो, कि ये तीन प्रकृतियां हैं, इसमें से अभी ये ऊपर लगाने से, इन दो की उद्वेलना होते होते कितना बाकी रहा है, आवली प्रमाणी बाकी रहा, ऐसा भी ले सकते हैं उसको। अभी इसी ने ना, अभी ऊपर उसने अंतर किया तो ये तो निकल जाएगा, या आवली प्रमाण है तो उसमें ऊपर से कुछ आने का सवाल नहीं है, वो नीचे ही और वो गल गया,
ये दोनों का तो पिछले तो हो रहा है,
होने तो नहीं, आवली में प्रवेश कर रहे हैं क्या वो, अभी आवली में नया प्रवेश किसका हो रहा है उसकी बात चल रही है। तो यहाँ क्या लिखा है देखो, अथवा 28 प्रकृति 27 प्रकृतियों के इनमें से अन्यतर संस्कर्म वाले उपशम सम्यक्त्व के अभिमुख हुए मिथ्या दृष्टि के द्वारा अंतरकरण करके सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व की आवली प्रमाण प्रथम स्थिति के गला देने पर 26 प्रकृतिक प्रवेश स्थान प्राप्त होता है, यानी वो प्रथम स्थिति में आवली प्रमाण जो है वो तो गल गए, अभी वहां मिथ्यात्व का तो प्रवेश है वहां पर, अन्य भी सबका है परंतु अभी फिर भी वो पहले गल जाएगी, अभी मिथ्यात्व का रहेगा बाकी। एक समय ऊपर पड़ा था ना वो, अभी देखेंगे आगे उस पर। तो 28 और 27 प्रकृति किनमें से अन्यतर सत्कम वाले उपशम सम्यक्त्व के अभिमुख हुए मिथ्या दृष्टि के द्वारा अंतरकरण करके सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की आवली प्रमाण प्रथम स्थिति के गला देने पर 26 प्रकृति प्रवेश स्थान प्राप्त होता है, 25 प्रकृतियों के प्रवेशक उपशम सम्यक दृष्टि के द्वारा, अभी औपशमिक सम्यक दृष्टि है, औपशमिक सम्यक्त्व का काल चल रहा है, तो वहां उदयावली में क्या क्या है, ये तीनों प्रकृतियां नहीं है दर्शन मोहन की, अनंतानुबंधी है कि नहीं है, अनंतानुबंधी है कि नहीं है, है ना, एक समय ऊपर पड़ा है क्योंकि उसका सदवस्था रूप उपशम है, उसमें अंतर नहीं हुआ है, अंतर वाले अनुदय रूप है, यानी वो उदयावली में भी नहीं है, अनुदय तो ठीक है, उदयावली क्या, वो बड़ा बहुत बड़ा आवली से भी बहुत बड़ा अंतर पड़ा है बीच में, परंतु वहाँ अन्य 25 है कि नहीं है प्रकृतियां, अनंतानुबंधी की चारों है और अन्य भी सभी है, तो कहते वो प्रकृति 25 प्रकृतियों के प्रवेशक उपशम सम्यक दृष्टि द्वारा मिथ्यात्व सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व इनमें से किसी एक प्रकृति का अपकर्षण करने पर अथवा सासादन सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर एक समय तक 26 प्रकृतिक प्रवेश स्थान उपलब्ध होता है। है तो 28 वाला, क्योंकि जब पहले कल मैंने बात की थी अंतर की, उपशम सम्यक दृष्टि जीव उसके ऊपर अभी ये उपशम का काल चल रहा है उसका, यहाँ तीनों का ही उपशम है। अब ये उपशम का काल यहाँ पूरा हो गया, अब यहाँ नए निषेक तैयार हो गए। पर यदि मिथ्यात्व का उदय है तो मिथ्यात्व की रचना उदय के समय से लेकर चलेगी और इन दोनों की आवली के ऊपर से लेकर चलेगी शुरू में, बाद में वो तो नीचे नीचे गल कर आते जाएगी। अभी शुरुआत में पोजीशन क्या है, मिथ्यात्व ने प्रवेश कर दिया है और बाकी दोनों ने प्रवेश नहीं किया उदयावली में। हाँ, ये 26 वाला, ये 26 वाला अकेला मिथ्यात्व नीचे आ गया। नहीं नहीं, वो दोनों का होगा बाद में। हाँ, उसमें 26, क्योंकि किसी एक का जो जिसका उदय होगा उसका उदय उसी को उदय के समय से लेकर प्रवेश होगा, तो समय मिथ्यात्व का हो या किसी का भी। हाँ, इसीलिए कहा ये इन्होंने, अथवा कहते हैं सासादन समय दृष्टि के मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर। सासादन समय दृष्टि था तो सासादन समय दृष्टि की क्या पोजीशन थी, ये सारा उपशमित ही पड़ा था। यहाँ जो 25 प्रकृतियां उदयावली में थी, उदय अनंतानुबंधी का नहीं था, परंतु प्रवेश तो सभी कर रही थी 25 के 25। हमें केवल प्रवेश किसका चल रहा है उसकी बात चल रही। अब मिथ्यात्व का भी प्रवेश हो गया मिथ्यात्व में आने पर, क्योंकि वो उपशम काल था, वहां भी ऐसे समझना ना, ये हम ऐसा देख रहे थे ना, उपशमित था, अब मिथ्यात्व में आ गया है, तो मिथ्यात्व की रचना उदय के समय से लेकर होगी और बाकी दो प्रकृतियां उदयावली के ऊपर पड़ी रहेगी। तो एक समय तक सासादन समय दृष्टि के मिथ्यात्व को प्राप्त होने पर एक समय तक 26 प्रकृतिक प्रवेश स्थान उपलब्ध होता है, किंतु इतनी विशेषता है कि सूत्र में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करने पर यह वचन उदाहरण मात्र है, इसलिए इन प्रकारों का भी संग्रह करना चाहिए। यानी ये कहाँ कहाँ 26 प्रकृतिक होता है, एक तो बताया कि इन दोनों की उद्वेलना करने पर, वो तो उन्होंने सूत्र में ही बताया था। अनादि मिथ्या दृष्टि को भी है। फिर तीसरा उपशम सम्यक्त्व के अभिमुख वाला, अंतर करने के बाद वो पहली स्थिति गला देने पर, फिर 25 प्रकृतियों का प्रवेशक था। हाँ, तो एक का आकर्षण किया या सासादन वाला मिथ्यात्व में आ गया, ऐसे अलग अलग 5 उन्होंने बताए। इन सब की बात होते वो 26 का होता है। अब यही रुके ही हम जावाणी।